स्वपदं भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात् वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्टालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षण वेणु स्वनैर्गोपीर् गोपीनाथ श्रिये सुनः हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे श्री बरसाना धाम की हरे कृष्णा। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। जीवन का लक्ष्य अगर एक वाक्य में बताना है तो ये है कि वो राधा रानी की कृपा प्राप्त करना। थोड़ा सा आवाज़ कम करो। राधा रानी सर्वतोपरि है, सर्वस्व है, और श्री कृष्ण हमको बताते हैं कि राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त करनी है। स्वयं अपने उदाहरण से श्री कृष्ण श्याम सुंदर जी राधा रानी से कैसे व्यवहार करना है, राधा रानी को जीवन में कौन से स्थान पर रखना है, ये सब श्री कृष्ण स्वयं दिखाते हैं। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि थोड़ा थोड़ा धन संपत्ति, थोड़ी थोड़ी अधिकार शक्ति, थोड़ा थोड़ा विद्या और थोड़ा थोड़ा सौंदर्य होने पर हमको कितना गर्व होता है, और उस गर्व में इतने चूर होते हैं कि भगवान को भी भूल जाते हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो अगर किसी व्यक्ति के पास में पूरे विश्व का ऐश्वर्य हो, षड ऐश्वर्य हो, संपूर्ण अनंत मात्रा में, तो वह व्यक्ति को कितना गर्व होना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति भी इतना सब होने पर भी नतमस्तक होकर, याचक होकर, भिक्षुक बन के बरसाना में प्रवेश करते हैं। वो हमारे श्री कृष्ण भगवान है। सारा जो उनका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की जितनी भी संतुलित शक्ति है, यानी कि बैलेंस पर्सनालिटी, वो सब इम्बैलेंस हो जाते हैं। और रसिक भक्तगण बताते हैं कि श्री कृष्ण तेजस्वी तब तक दिखते हैं जब तक वो राधा रानी के साथ रहते हैं। जैसे राधा रानी से दूर हो जाते हैं तो वो निस्तेज हो जाते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि राधा का विरह होता है उनको, इसलिए वो निस्तेज दिखते हैं, और दूसरा है राधा का तेज उनके साथ में रहता, इसलिए वो निस्तेज हो जाते हैं। इसलिए बरसाना बहुत ही विशेष स्थान है। जैसे राधा कुंड श्याम कुंड है, वैसे ही बरसाना नंदगांव है, क्योंकि तो वहाँ पर ऐसी प्रेम की लीलाएँ होती है कि राक्षस वहाँ पर नहीं आ सकता है। बाकी जगह पर गौचारण कर रहे हैं, कृष्णासुर आ गया, केशी आ गया, तो उसका वध भी हो जाता है, बीच में इंटरप्शन होता हो सकता है, लेकिन बरसाना की प्रेम लीला के बीच में व्यत्यय नहीं आ सकता। तो उसको व्यत्ययहीन करने के लिए भगवान ने, राधा रानी ने ऐसा लीला किया कि कंस को वहाँ पर कन्या बना दिया और छः महीने तक कन्या ही रखा, और उसके वजह से कंस ने भी वादा किया। हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं कि भयात कंसात, कामात गोप्य द्वेष्यात चेद्य, और भयात कम साथ। किन किन लोगों ने किन किन अनर्थों के माध्यम से भगवान को जीता, तो उसमें लिखा है कि कंस ने भय के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त किया। लेकिन ब्रज के रसिक भक्त बताते हैं कि ये सत्य नहीं है। कंस एक्चुअली कृष्ण से भयभीत नहीं था। अगर कृष्ण से भयभीत होता तो बार बार मथुरा से नंदगांव, गोवर्धन, यहाँ लोगों को क्यों भेजता। लेकिन वास्तविक उसको डर था राधा रानी का। उस डर के माध्यम से ना उसने कभी हिम्मत की वापस जाने की, ना खुद नहीं गया, किसी को और भेजा, वो भी नहीं किया उसने। दिस इज एज पर ब्रज सेंट्स, किनको वास्तव में इतना भयंकर भय था राधा रानी के प्रति। एक बार जो अनुभव आया ना, उसके बाद कभी भी किसी को भेजा नहीं और किसी को खुद लौट के नहीं गया वो। इसका कारण ये है। अभी मैं आपको, कुछ ज़्यादा समय नहीं है, महाराज जी आने वाले हैं, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद है कि आप लोग इतना थक कर भी अभी आकर बैठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। क्योंकि ब्रज का जो सब वातावरण है ना, वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। सुबह ठंड, दोपहर में कड़क गर्मी, ऊपर से भीड़, हाँ सब केओटिक होता है। कभी कभी कहाँ जाए कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ घूमना है, कहाँ टर्न करना है। उसमें से हमको कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो क्या करना चाहिए उसके लिए। अगर इतना समझो बहुत चैलेंजिंग कंडीशन है, प्रसाद एक जगह पे चलना है, एक जगह पे उतरना है, एक जगह पे कहाँ जाना है पता नहीं है, क्या कहानी है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किधर जाना है, कौन आगे चला गया, माइक्रोफोन कहाँ चला गया, पता नहीं, समझ रहा है। तो भक्तों का संग बनाए रखना चाहिए और इसमें भी जो बताया गया है उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बीच में अपने मनगढ़ंत बातें नहीं करनी चाहिए। वो जो आदेश पालन की जो प्रक्रिया है ना, आज्ञा पालन, वो हमें बहुत बड़े बड़े केओस में से बराबर जगह पर पहुंचाएगी। ये बात हमको ना इतने दिमाग में फिट करना चाहिए। कितने भी बड़े सीनियर डिवोटी होंगे, अगर किसी के अंडर यात्रा में जा रहे हैं तो वो जो बताया गया है उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करना चाहिए, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि जब आज्ञा पालन होता है ना, तो आज्ञा पालन के साथ कृपा आती है। कृपा विल कम विद दी फॉलोइंग अप इंस्ट्रक्शन। और आप भटकेंगे नहीं। भटकते कब है, जब मन मर्जी करते हैं तो भटक जाते हैं। व्हेन वी डू इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज थिंकिंग दैट वी आर इंटेलिजेंट, वी गेट लॉस्ट। तभी देखिए बरसाने की जो रज है ना, वो कितनी पावरफुल है। राधा रानी और सब सखियाँ मिलकर इस ब्रज रज के साथ खेल रही है। हम सब लोग ने वो बचपन में खेल खेला है। आप लोग, पता नहीं आपने खेला कि नहीं, हमारी छुट्टी के दिन में हम सब लोग बच्चे एकत्र होते थे और कोई फादर बनता था, कोई मदर बनता था, फिर कोई बच्चे बनते थे, कोई नाना नानी बनते थे, और मदर खाना बना रही है, फिर फादर काम पे जा रहा है, घर पे आ रहा है, ऐसा हम लोग खेलते थे दोपहर में, कई घंटे खेलते थे। फिर मदर जो है वो कुछ बना रही है और दे रही है, हम खा भी रहे हैं, ऐसा उसको कहते हैं घर घर, यानी घर खेलना, गृहकुल। तो राधा रानी अभी वो गेम खेल रही है और सब सखियाँ उनको हेल्प कर रही है, कोई सब्जी काट रही है। हाँ, राधा रानी ने ब्रज रज का ही चूल्हा बनाया है, ब्रज रज के बर्तन बनाए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जितने भी सब्जी है वो भी ब्रज रज है, जितना भी चावल है, गेहूँ है, आटा है, वो सब ब्रज रज है। मतलब इंग्रेडिएंट्स आर ओनली ब्रज रज, और वो काट भी रहे हैं ब्रज रज सब कुछ। और अभी हम लोग हंस रहे हैं ना, सुन के भी हंस रहे हैं, लेकिन वो नहीं हंस रहे हैं, वो सब लोग मग्न हैं। दे आर नॉट थिंकिंग इट इज ब्रज रज, दे आर थिंकिंग इट इज पम्पकिन, दे आर थिंकिंग इट इज आटा, सगोली बना रहे, रोटी बना रहे। तो उसमें राधा रानी ने कई चूल्हे बनाए और वो बहुत चूल्हों में एक साथ अनेक आइटम बना रहे। राधा रानी की एक विशेषता है, वो ना हजारों चूल्हे एक साथ में चला सकती है और हजारों डिफरेंट आइटम एक साथ बना सकती है। उसमें नमकीन हो, मीठा हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, जो भी कुछ हो, गीला आइटम हो, सूखा आइटम हो, जैसे हमारे गोवर्धन पूजा में होता है ना, 50 चूल्हे लगते हैं, लेकिन एक चूल्हे पे एक आदमी बैठता है और एक ही आइटम बनाता है। ऐसा नहीं कि वो एक साथ में 50 चूल्हे खुद कंट्रोल कर रहे हैं। राधा रानी अपने सखियों को ऐसा एंगेज करती है कि हजारों चूल्हे एक साथ हजारों आइटम बनाते हैं और वो भी परफेक्ट एकदम। तो अभी ये खेल जो है ना एकदम ऐसा सब लोग ऐसे मग्न होकर खेल रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी को एक बार जुहू मंदिर के GBC मीटिंग में ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था कि हाउ डू यू डिफाइन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन वन वर्ल्ड, व्हाट इज द गुड वर्ल्ड। तो उन्हें बताया था एब्सॉर्प्शन, मग्नता। कृष्णा कॉन्शियसनेस की एक्टिविटीज है ना, वैसा बोर होते हुए, अरे क्यों तीन ही माला हो गई, अभी 13 माला करनी है, अभी 4 ही माला हो गई, अभी 12 माला और करनी है, कब खत्म होगा ये, क्यों लिया मैंने ये व्रत, क्यों दिया हरे कृष्ण में आया मैं, क्यों 16 माला। बाकी संप्रदाय में तो ऐसा कुछ नियम नहीं है, 2 दिन आधा घंटा भजन करो हो गया काम, कोई पूछता भी नहीं है क्यों मैं हरे कृष्ण में आया। इस तरह से भजन नहीं करना चाहिए। अगर हमने स्वेच्छा से ये भजन स्वीकार किया है ना, हम लोगों ने स्वेच्छा से हरे कृष्ण में प्रवेश किया है, नोइंगली वेल वी हैव टेकन अ कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो वो सब काम दिल से करना चाहिए। हाँ, साधना भक्ति में बहुत बोर होता है, तो फिर भी यहाँ से पता होना चाहिए कि हमको यहाँ से बोर हो रहा है, लेकिन यहाँ से पता होना चाहिए कि करना है, वी हैव टू डू इट। फिर जब उसमें रुचि आती है और मग्नता आती है तो उसका वास्तविक आनंद आता है। अभी भी प्रभुपाद जी का लेक्चर मैं सुन रहा था, प्रभुपाद बोल रहे थे कि जब तक भौतिक दुनिया का इंटरेस्ट कम नहीं होता है तब तक भगवान के विषय में आनंद नहीं आता है। यू कैन नॉट एंजॉय कृष्णा कॉन्शियसनेस टिल यू आर बेरेफ्ट ऑफ एनी मटीरियल अटैचमेंट्स और लाइकिंग, यू नो, टेस्ट और इमर्शन, वी आर इमर्स्ड इन मटीरियल वर्ल्ड। तो ऐसे गोपियों का नहीं है, वो कुछ भी करते हैं ना, अभी फूल भी बिनते हैं ना, तो राधा रानी का भी आज फूलों का उत्सव है, सांझी उत्सव, उसमें सब सखियाँ फूल बिन रही है। तो एक को बताया गया है कि आपको पीला फूल बिनना है, तो दुनिया में उसको कुछ दिखता ही नहीं है पीले फूल के अलावा, खाली गुलाबी फूल दिखता है उसे, इट्स सो एब्सॉर्ब्ड। किसी को गुलाबी फूल बोला है तो उसको गुलाबी फूल ही दिखाई पड़ेगा दुनिया भर में, बाकी कितने भी सुंदर फूल होंगे, क्योंकि उसको बताया गया है कि तुमको आज गुलाबी फूल इकट्ठा करना है, तो गुलाबी फूल पे ही ध्यान रहेगा पूरा, कंप्लीट इमर्शन, एब्सॉर्प्शन। इस तरह से वो मट्टी भी है फिर भी सेवा में लगे हुए हैं सब गोपियाँ। और राधा रानी अभी पर्टिकुलरली चावल की खीर बना रही है और एकदम मग्न होकर बन रही है। उतने में दुर्वासा मुनि आते हैं, अब ब्रज में आते रहते हैं, नारद मुनि, दुर्वासा मुनि, सब लोग आते रहते हैं, संत है ना वो, भगवान के बड़े भक्त हैं। तो गोपियाँ भी ना एकदम भाव में रहती है, अरे राधा रानी खीर बना रही है, दुर्वासा मुनि को प्रणाम करते हैं, महाराज आइए खीर खाइए। दुर्वासा मुनि को सब बिक रहा है, वो किधर मग्न है उसमें, वो तो गोपियां मग्न है, उनके लिए खीर बन रही है, बाकी सब तो मट्टी मट्टी है। बोले क्या समझते हो अपने आपको, मट्टी खिलाओगे मुझे, भस्म कर दूंगा तुम्हें एकदम, हाँ 0 to 180 degrees तुरंत एंगर। गोपियां उनका रूप देखकर वो भस्म देने का मतलब, वैसे ही बहुत उग्र दिखते हैं वो, है ना, इज लुकिंग वेरी तपस्वी, शार्प आईज, यू नो, कृष्ण शरीर। तो गोपियां भाग जाती है राधा रानी की तरफ, बोलते महाराज जी, अरे महाराज जी, बोलते भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। राधा रानी तो मित भाषिनी, मधुर भाषिनी, मधुर संवादिनी, हाँ जो बोलती है तो ऐसा लगता है कि अमृत की धारा हो रही है। तो वो चलते चलते देखते हैं कि कौन लड़की बना रही है खीर, देखता हूँ मैं, तो उधर भी तो मट्टी दिख रही है सब। तो राधा रानी कहती है, महाराज जी इतना क्यों नाराज हो रहे हो, भस्म करने की बात क्यों कर रहे हो, थोड़ी खीर खा लो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी खा लो, चख तो लो। उसकी मधुर वाणी में हमारे दुर्वासा मुनि भी बह गए और उनके हाथ से मट्टी का पात्र लिया और मट्टी की खीर उन्होंने परोसी और ले लो गरम गरम बनी है, जल्दी खा लो। और वो खाने लगते हैं, ब्रज रज खा रहे हैं, और ब्रज रज खाते खाते उनको दिव्य खीर खाने का आनंद आ रहा है। शरीर के रोमांच खड़े हो रहे हैं, आंखों से प्रेम का अश्रु बह रहे हैं, कंठ गदगद हो रहा है, बोले और दो, थोड़ी सी और दो। सब लोग भी देख रहे हैं, अभी तो भस्म करने की बात कर रहे थे, अभी तो मिट्टी खा रहे हैं, मतलब उनको नहीं लग रहा मिट्टी, लेकिन वो लग रहा है अभी तो कैसे खा रही है, पहले सांप देने को मूड में थे। तो वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, योग का बल भी प्रेम के बल के सामने, माधुर्य के बल के सामने परास्त हो जाता है। दुर्वासा महर्षि योगी है ना, उन्हें पंच महाभूतों पर नियंत्रण प्राप्त किया है, कुंती के घर रहकर तपस्या की थी उन्होंने और पंच महाभूतों को अपने वश में किया था, पंच महाभूत नहीं सारे देवताओं को, पंच महाभूत ग्रह तारे सबको अपने वश में किया था। यहाँ तक कि एक मंत्र बोलेंगे तो वो देवता आएगा और सेवा करके जाएगा, इतना उनके पास शक्ति थी। और ऐसे योगी, पावरफुल योगी ब्रज में आए थे। लेकिन राधा रानी के धाम में क्या है, माधुरी और प्रेम है, कोई ऐश्वर्य, कोई गर्व, कोई ज्ञान का घमंड कुछ है ही नहीं उधर, जो है केवल प्रेम है, वो सब प्रेम कृष्णमय प्रेम है। तो दुर्वासा मुनि भी उस प्रेम में, क्या कहते हैं ना, कोयले की कान में कोई घुसेगा ना तो ऐसा स्वच्छ कपड़ा पहन के जाएगा तो क्या होगा, काला हो जाएगा, यू कैन नॉट अवॉइड, कितना भी ऐसे चलेंगे तो भी कहीं ना कहीं लगेगा। उसी तरह से माधुर्य धाम में आएंगे तो प्रेम और माधुर्य का स्पर्श तो होगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे आए और वैसे ही रुक्ष वापस चले गए, मतलब आप यहाँ पे आए नहीं। यहाँ पे आने का प्रूफ यह है कि हमारे घर का जो हमें गर्व है, घमंड है, जो भी कुछ अहंकार है, उसमें कमी होना और कृष्ण के प्रति ज़्यादा प्रेम होना, ये होना चाहिए तो आपकी ब्रज यात्रा सफल है। न तो आए, खाए, घूमे और गए और बीच में शॉपिंग किया, डिवोशनल शॉपिंग, वापस चले। हम लोगों को सबको उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, लगातार कहता हूँ, राधे किशोरी दया करो, ये कॉन्स्टेंटली मन में जपते रहना चाहिए, राधे किशोरी दया करो। कॉन्स्टेंटली बेग इन द बॉटम ऑफ द हार्ट फॉर द मर्सी ऑफ राधा रानी। जो कृष्ण करते हैं स्वयं, हम लोग नहीं करते, कृष्ण करते हैं स्वयं, सदैव यहाँ पर वो राधा रानी की कृपा याचना करते हैं। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री कृष्ण उस कृपा कटाक्ष, साइड लॉन्ग ग्लैंसेस ऑफ लव, ऑफ मर्सी, इसकी याचना करते रहते हैं सदैव। जो सब चीज़ के मालिक है, सब चीज़ के स्वामी हैं, फिर भी ये चीज़ के लिए भिक्षा मांगते रहते हैं किसी और से, तो वो हमें सीखना चाहिए भगवान से। भगवान वो खुद यहाँ पर खुद के स्वयं के उदाहरण से बता रहे हैं। तो दुर्वासा अपने प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, दुर्वासा होने पर भी, दुर्गम स्वभाव के होने पर भी पिघल जाते हैं और एक अद्भुत काम करते हैं, राधा रानी को वरदान देते हैं कि तुम्हारे हाथ से इसके आगे जो भी बनेगा, मट्टी भी हो तो भी उसको अमृत जैसा स्वाद होगा, अमृत से भी अधिक स्वाद होगा, और जो भी इसको खाएगा, अभी बनाने वाले को दिया, फिर उसके हाथ से जो खाएगा वो रोग से मुक्त हो जाएगा और सदैव विजयी रहेगा, कभी पराजय का सामना नहीं करेगा। व्हाट अ बेनेडिक्शन। तो पूरे ब्रज में ये खबर फैल जाती है, वो उग्र बाबा आए थे, उन्होंने बहुत मीठा वरदान दिया राधा रानी को। पूरे ब्रज में बात फैल जाती है, सब लोग इतने खुश हो जाते हैं कि जो भस्म करने की बात कर रहे थे उनसे राधा रानी ने वरदान लिया। सोचो आप, जो शाप देने की बात कर रहे थे उन्होंने इतना मीठा वरदान दिया। ये करामात केवल राधा रानी कर सकती है। प्रेम ही सब कुछ है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम होता है तो सहनशीलता होती है, प्रेम होता है तो संयम होता है, प्रेम होता है तो सब कुछ जो असह्य होती है वो सहनीय हो जाती है। खाली प्रेम की कमी है, इसलिए हम लोग एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते क्योंकि प्रेम नहीं है। जैसे प्रेम होता है, सम्मान होता है, आदर होता है, तो आदरणीय व्यक्ति के लिए सब कुछ सही लेते हैं हम लोग। जब गुरु जी की सेवा प्राप्त होती है तो गुरु जी की पर्सनल सेवा में कभी लंच नहीं मिलता है, डिनर नहीं मिलता है, टाइम पर सोने को नहीं मिलता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन गुरु जी पर इतना प्रेम है और इतना भाग्य अपना समझते हैं तो वो खाने को नहीं मिल रहा है, सोने को नहीं मिल रहा है, वो भी नो प्रॉब्लम। हम लोग आनंद का अनुभव करते हैं उसमें कि मैंने तो उस दिन खाना ही नहीं खाया, सबसे पहला मिल रात को 9 बजे खाया क्योंकि दिन भर गुरु जी की सेवा में था, तो मौका ही नहीं मिला बीच में। तो बात घूमते 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 मैया बाबा को पहुंच गई, वहाँ पे नंदगांव में पहुंच गई, इसके पास यशोदा माता के पास। अभी उसका चिंतन क्या है, केवल श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर। यशोदा मैया का क्या भाव है, कल जाएंगे हम उनके पास। ये जो है ना नीचे की पलक है ना, दिस इज लाइक अ कप यू नो, एक्चुअली लाइक अ कप। अश्रु जब आते हैं तो जमा किधर होते हैं, पहले यहाँ पर होते हैं, यहाँ भर जाता है तो नीचे आते हैं, है ना। दिस इज लाइक अ कप, पहले गिरता नहीं है पहले भर जाता है। यशोदा माई का नीचे का जो पलक है वो सदैव 24 घंटे आंसू से भरा रहता है, प्रेम के अश्रु। और उनका जो ऊपर का कपड़ा है, ऊपर का उत्तर यह पहनने वाला, हमेशा दूध से गीला रहता है, कृष्ण भगवान के याद से, कृष्ण भगवान के विचार से, कृष्ण भगवान के चिंतन से, कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव से उनका जो स्तन है वो हमेशा दूध की धारा बहते रहता है। यशोदा मैया जहाँ भी चलती है वहाँ कर केवल दूध ही स्प्रिंकल होते रहता है कॉन्स्टेंटली। ये वात्सल्य भाव की शक्ति है। दिन रात जो बालक के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो क्या सोच रही है कि मेरे बालक को सबसे बेस्ट प्रसाद मिलना चाहिए, मेरे बालक को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, सबे सदैव विजयी होना चाहिए मेरा बालक, एवरीथिंग बेस्ट शुड बी विद कृष्णा। तो जैसे ही खबर कान में आती है सोचती है कि कैसे इस लड़की को मेरे कान्हा के लिए कुकिंग के लिए मैं ला सकती हूँ, तब से वो प्लानिंग शुरू होता है। तो एक दिन महाराज ने हमें 1991 में वो बरसाना के मंदिर में बैठकर ये लंबी कथा सुनाई थी कि कैसे वो एक दिन बरसाने में भानु महल विश्वानु महाराज के घर में, यशोदा कीर्ति माई के घर पे एक उत्सव था, वो उत्सव में नंद बाबा यशोदा मैया को बुलाया था क्योंकि नंद बाबा और विश्वानु महाराज ना एकदम थिक फ्रेंड्स हैं, वेरी वेरी बी थिक फ्रेंड्स, तो किधर भी उनका कुछ भी होता है तो साथ में रहते हो, संकट आया साथ में रहते हैं, साथ में शिफ्ट हो गए गोकुल, साथ में गोकुल से बैक शिफ्ट हो गए, सब कुछ साथ में करते हैं। तो उनको बुलाया उन्होंने, तो इसके मन में तो विचार था शायद आज मैं पूछूंगी, तो वो आए गले मिले तो कीर्ति मैया उनको लेकर गई, तो यशोदा कहती है राधा रानी किधर है, तो वो रसोई में है, वो सब गोपियों के साथ रसोई बना रही है आज के उत्सव के लिए, चलो देखते हैं। तो कीर्ति मैया उनको लेके जाती है, तो उसी वही भाव है, रसोई में हजारों सखियाँ हैं, हजारों चूल्हे हैं और सब चूल्हों में एक एक सखी लगी हुई है और सबको राधा रानी निर्देश दे रही है, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, डू दिस नाउ डू दिस नाउ, और वो मग्न है, उनको पता नहीं कौन देखने को आ रहा है। तो वो जो सीन था ना वो इतना ओवरवेलमिंग था, भाव विभोर करने वाला था। यशोदा माई और प्रभावित हो गई, कहती है कितनी कितनी कुशल कन्या है आपकी, हाउ एक्सपर्ट शी इज, एक साथ में कितना काम कर रही है, वो भी दिल लगा के मग्न होकर, पता भी नहीं कौन आया कौन गया। तो ऐसे बातें करते करते पूछती है कि ये तुम्हारी कन्या हमारे बालक के लिए भोजन कर सकती है, बना सकती है। अब इनके मन में क्या चिंतन होता है, सदैव एक ही चिंतन होता है, कैसे कन्हैया की सगाई मेरी लड़की के साथ हो जाए, हाउ आई कैन मैनेज टू गेट श्याम सुंदर गेट एंगेज विथ माई डॉटर राधा रानी। तो जैसे ही बोलते वो तुरंत हाँ कर देते, यस नो प्रॉब्लम। तो उस दिन से राधा रानी का नंदगांव से बरसाना, बरसाना से नंदगांव जाना शुरू होता है, अप एंड डाउन डेली विजिट। और यशोदा माई उनके लिए पावन सरोवर में अपने घाट पर एक कुआं खोदती है, कल जाएंगे हम लोग पावन सरोवर, पवन सरोवर में वो नंद बाबा का प्राइवेट कुंड है, उसका नाम था नंद सरोवर, और नंद सरोवर का नाम बाद में पावन सरोवर पड़ा। तो पावन सरोवर होने के नाते, नंद सरोवर होने के नाते एक घाट है पूरा, उसमें एक एक साइड में यशोदा देवी, रोहिणी, ये सब लोगों के लिए प्राइवेट है, कोई जाता नहीं। अपने घाट पर उन्होंने मीठे पानी का एक कुआं खोदा और वहीं पर रसोई बना दिया उनके लिए फॉर कुकिंग, और राधा रानी वहाँ पर हमेशा कुकिंग करती थी कृष्ण के लिए। वृषभानु महाराज ने ये रोज का आना जाना देखकर पावन सरोवर पर एक महल बना दिया जो अभी नहीं है। पावन सरोवर में क्यों महल बनाया? क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में लंच बनाने में कुछ समय होता है, तो सखियां क्या करेंगी, तो आराम करने के लिए एक महल बना दिया, यू कैन टेक रेस्ट देयर। और हमारा कैसा होता है, एक फिक्स गैस का चूल्हा होता है, वो 5 साल 10 साल चलता है, वैसा वृंदावन में नहीं होता था उस समय। हर दिन नया चूल्हा बनाने का, या नए चूल्हे बनाने हैं मट्टी के, और खाना बना के हो गया तो उसको तोड़ देना है और साफ सफाई करनी है पूरा, और दोबारा खाना बनाना है शाम को, दोपहर को, रात को, तो हर बार नया चूल्हा बनाना है। इतना बढ़िया सिस्टम है, चूल्हा ऑल्सो इज मेट, क्या कहते हैं उसको, वन टाइम यूज, बर्तन भी वन टाइम यूज, अगर मिट्टी के बर्तन हैं तो भी वन टाइम यूज। पांडवों के समय भी था, खाने के लिए भी डिस्पोजेबल गोल्डन प्लेट्स, एक बार खाया तो गोल्ड प्लेट, डस्टबिन, नॉट टू बी यूज अगेन, ऐसे कंडीशन थी, इतना इतना ऐश्वर्य था उस समय। और नियम भी था वो, कोई भी मिट्टी के बर्तन में दोबारा बर्तन भोजन बनाया जाता नहीं था, उसको तोड़ के फेंक देते थे, नया बर्तन नेक्स्ट टाइम। क्या खाने में स्वाद होगा, मिट्टी के बर्तन भी नए रोज, नॉट यूज्ड। तो वैसे वहाँ पर रसोई की व्यवस्था की, लेकिन फिर भी दो मील्स के बीच में एक समय होता था आराम करने के लिए। तब वृषभानु महाराज ने एक महल बनाया था वहाँ पर, तो उसकी बहुत चटपटी कहानियाँ हैं। राधा रानी जब भोजन बनाती थी और कृष्ण भगवान बैठते थे खाना खाने के लिए, तो राधा रानी खिड़की से देखती थी कैसे चेहरे पे इमोशन क्या है, अच्छा लगा नहीं लगा, तो समझता ना चेहरे पे, कोई व्यक्ति खा रहा है तो चटनी खाया तो मतलब तीखा लग गया, और ऐसा खाया तो नमक ही नहीं है, खाया तो कितना ज़्यादा मीठा है, ऐसा चेहरे पे तुरंत पता चलता है, नहीं बोलेंगे तो भी। ससुराल में अगर जमाया जाता है खाने के लिए तो कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन चेहरे पे सब दिखाई पड़ता है एक्चुअली क्या चल रहा है। हाँ, जमाई बापों को शायद सब्जी अच्छी नहीं लगी, नमक कम है क्या, हाँ थोड़ा नमक दे दो ऐसे होता है। तो वैसे ये चुप चुप के देख रही है, और कृष्ण को पता चलता है कि अभी देख रही है, तो बलदेव जी को कहते हैं क्या सब्जी बनाई है, तू ही खा ले इसको। फिर पकौड़ा उठाता है, कुछ स्वाद ही नहीं इसको, ये तू लो धाऊ तू खा ले, हे मधुमंगल तू खा ले। राधा रानी को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और बलदेव जी खा रहे हैं, बोलते इतना स्वादिष्ट है, क्या बोल रहा है तू, क्या तुम्हें स्वाद ही पता नहीं चलता है कुछ। तो राधा रानी को चिढ़ाने के लिए ऐसे नाटक करते थे, और राधा रानी वहाँ पर कभी कभी रोती थी, अरे इतना सब गंदा खाना कैसे मैंने बनाया, ये कन्हैया को पसंद नहीं आ रहा है। फिर जाकर कन्हैया फिर ऐसे ऐसे प्रेम की लीला है। अभी कैसा है, राधा रानी को रोज आ रही है, रोज जा रही है, रोज आ रही है, रोज आ रही है, रोज खाना बना रही है, रोज आप देख रहे हैं उसको। हमारी गीता में एक श्लोक है ना, ध्यायते विषयां पुंसा, उसका मतलब क्या होता है, अपना जो प्रेम का विषय है उसको रोज देखते हैं ना तो उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। आपकी प्रिय वस्तु जो है वो आपके पास नहीं है, दूर है, तो आपको ठीक लगता है, रोज आपको दिखती है, रोज दिखती है, रोज जलेबी दिखती है तो रोज खाने का दिल करता है, रोज आज खाऊंगा, कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा। तो रोज राधा रानी प्रिय वस्तु को रोज देख रहे हैं, और रोज जाते हुए देख रहे हैं, अरे रोज का आना जाना ये क्या है, यहीं पे रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, तो यही रहने के लिए क्या करना होगा, विवाह करना होगा श्याम सुंदर के साथ, तो यही रहेगी, यही बनाएगी, यही पजाएगी, खाना बनाएगी। तो एक दिन ना ये सब मन में चल रहा है, बोलने के लिए संकोच हो रहा है कीर्ति मैया को, इनको भी उनको भी, तो एक दिन ना वो भाव जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता है। यशोदा किचन में खड़ी है और राधा रानी अपने सखियों के साथ भोजन बना रही है, तो इतना उनकी कुशलता देखकर इतना प्रेम आता है उनके मन में, कि वो राधा रानी को गले लगा देती है, आलिंगन देती है, इतना प्रेम से आलिंगन देती है, अपने अश्रुओं से राधा रानी को भिगो देती है पूरा। कितनी सुंदर कन्या है, मेरे पुत्र के लिए इतनी सुंदर पुत्र वधु है ये। तो भाव में जब गले लगाती है तो और प्रेम बढ़ाता है, तो तुरंत क्या करती है, रसोई से हल्दी लेती है और उसको हाथों को मल देती है। अभी आजकल के ज़माने में अगर किसी को हल्दी लगाया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो ज़माने में अगर कोई कन्या को हल्दी लगाता है इसका मतलब अपने बेटे के साथ में सगाई कर रहे हैं उसकी। और आप ऐसा नहीं कर सकते हो बिना रिवाज से चर्चा किए, बिना ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन भाव तो भाव ही होता है ना, भाव थोड़ी बोल के आता है कि मैं 10:50 पे आ रहा हूँ सावधान रहना, ऐसा नहीं होता है ना, भाव तो कभी भी आता है, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। प्रेम की दुनिया में कब क्या होगा कोई कह नहीं सकता है, वहाँ पर कोई समय का टाइम टेबल का काम नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अननोन अननोइंगली। तो वो भाव में वो अपने आप को भी खो बैठती है, लेकिन प्रेम इतना प्रधान हो जाता है कि वो तुरंत प्रेम से उसको अपनी बहू बनाने के संकल्प के रूप में हल्दी लगा देती है। और राधा रानी मन ही मन में इतनी खुश होती है क्योंकि उनके मन में भी वही वर है जो यशोदा के मन में उनके लिए है, वर यानी वुड बी हस्बैंड, तो बड़ी खुशी होती है। और ललिता विशाखा भी देख रही है, उनको भी खुशी होती है। तो उस दिन तो वो जमीन पे चल नहीं रहे, आसमान नहीं चल रहे, आजकल जमीन पर पाव नहीं पड़ते मेरे, आकाश में जा रहे। घर पे जाने का समय हुआ तो वो दिन तो जमीन पे चले ही नहीं, वो हवा में ही उड़ते जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है उनको, इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है। सब सखी आनंद में है कि जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो आज सफल हो गई, अपने आप सफल हो गई। और बरसाने की बॉर्डर में पहुंचते ना तब उनका फ्लाइट लैंड होता है जमीन पे, क्योंकि तब उनको होश आता है कि मैया को क्या बताएंगे, मैया क्या बोलेगी, रसोई के लिए भेजा था, सगाई करने के लिए भेजा था क्या, आई हैव नॉट सेंड यू टू गेट एंगेज्ड, आई हैव सेंड यू टू ओनली कुक फॉर हिम। तभी तो डांट पड़ेगी कि हमारे ये संस्कार नहीं है बरसाना के, किसी के घर में जाए और सगाई करके लौटे आए। आजकल के ज़माने में कैसे होता है, अचानक एक दिन लड़का एक लड़के के घर पे आता है, बोलता है मम्मी पापा शी इज़ योर डॉटर इन लॉ, टुडे वी गॉट मैरिड, जस्ट नाउ फ्रॉम द कोर्ट वी आर कमिंग वी आर गॉट मैरिड, सो चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद दो, सुखी रहो बेटा। देयर इज़ नो चॉइस ना, देयर इज़ नो चॉइस। हरे कृष्णा, व्हाई आर यू कमिंग इन बिटवीन कथा, जस्ट रिलैक्स नो, सिट डाउन। सो क्या कह रहा था मैं, हाँ तो वैसे उनको लग रहा था कि मैया को क्या जवाब दूंगी, मैया पूछेगी तुमको मैं सगाई करने के लिए भेजा था क्या, तो मैं क्या बोलूंगी उनको। तो फिर ललिता के पास जब भी समस्या होती है कोई तो ललिता के पास जाती है वो, ललिता इज द बेस्ट एक्सपर्ट यू नो, कुछ कृष्ण की तरफ से आतंक हो गया या कुछ ऐसे बदसलूकी हो गई या कुछ भी हो गया तो ललिता इज लाइक टफ लेडी, वाम क्या कहते हैं उसको, वाम स्वभाव की है वो, राधा रानी कोमल स्वभाव की है वो, तुरंत ऐसा ना शी गेट्स ओवरवेल्म्ड, लेकिन राधा रानी के सामने खड़ी रहती है ललिता। लेकिन कुछ समस्या होती है तो भी वो भी सुलझ जाती है, कहते हैं कि कुछ भी होता है ना तो मुकदमा ललिता के पास पहुंचता है, शी इज़ लाइक अ जज, क्या किया जाए। तो मतलब कोई चिंता मत करो, संध्या का समय है, सब लोग अपने अपने घर पे गए हुए हैं, अंधेरा होने वाला है, ये पिताजी का कुंड है, प्रिया कुंड कहते हैं उसको, पिताजी ने तुम्हारे लिए बनाया है स्नान करने के लिए, इस नाम प्रिया कुंड है, उसमें हाथ धो लो, हम भी मदद करेंगे अच्छी तरह से निकल जाए इसलिए। और हम लोग किसी को नहीं बताएंगे, हम लोग घर पर चले जाएंगे, शांति रखेंगे एकदम। तो फिर अभी राधा रानी हाथ धो रही है पानी में, आप जस्ट इमेजिन करो, हाँ अंधेरे का समय है, ट्वाइलाइट है, दिन भी नहीं रात भी नहीं है, अंधेरा हो रहा है और राधा रानी बैठ के हाथ मल रही है, लेकिन मन में चिंतन चल रहा है कि निकालूं कि नहीं निकालूं। यानी सगाई जो हुई है उसको कैंसिल करूं कि रखूं, मन में विचार चल रहा है कि अगर मैं इसको मिटा दूंगी तो फिर दूर रोज का आना जाना चलता रहेगा, लेकिन अगर रखूंगी तो वहीं के वहीं रह जाऊंगी, फिर वो रोज का आना जाना और वो छुप छुप के मिलना और संकेत करना और इस वन में उस वन में मिलना, वो जो चटपटा आनंद है वो समाप्त हो जाएगा. तो बोथ आर गुड, विच वन आई शुड चूज. शी इज रबिंग एंड रबिंग एंड रबिंग. ललिता कहती है, क्या सोच रही हो, कब का निकल गया हल्दी, अभी तक मल रही हो, चलो अभी आप. तो शी इज थिंकिंग, शुड आई लूज माई इंडिपेंडेंस एंड बिकम वाइफ ऑफ श्याम सुंदर एंड स्टे इन नंदगांव, और शुड आई कीप माई इंडिपेंडेंस ऑफ गेटिंग एंग्री इन बिटवीन एंड नॉट कमिंग एंड गोइंग अवे. शी इज इन डायलेमा. और फिर भी ललिता उसको उठाती है और चलो अभी हो गया. तब तक अंधेरा हो जाता है, घर पहुंचते हैं तो सब लोग आनंद सो जाते हैं. दूसरे दिन प्रिया कुंड पे गांव के लोग आते हैं रोज की तरह प्रातर विधि करने के लिए, गाय को धोने के लिए या वैसे भी हो. तो क्या देखते हैं, जो ट्रांसपेरेंट वाटर था वो आज पीला हो गया है. तो हमारे महाराज जी ना एक सुंदर बात बताते हैं, आप सब लोग ध्यान से सुनना, कि जब प्रेम होता है ना किसी पर, आपका सब पर नहीं हो सकता है लेकिन कुछ लोगों पर हो सकता है, एक परिवार में हो सकता है, जिस पर आपका हृदय से प्रेम है, निरपेक्ष प्रेम है, अगर वो अमेरिका में भी है तो वो अगर वहाँ बीमार पड़ गया ना तो आपको यहाँ पे कुछ संकेत होता है कि कुछ गड़बड़ है, फ़ोन करना चाहिए, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे. तो आप फ़ोन करेंगे, बेटा कैसे हो, बोले हाँ मुझे बुखार आ रहा है, हाँ मुझे लग ही रहा था कि आज को फ़ोन करना चाहिए, शायद कुछ आपके पास गड़बड़ है आज. ये मुझे स्वयं परम पूज्य राधानाथ महाराज ने बताया है, क्योंकि एक शिष्य के पिताजी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, तो उनको ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था. तो हमारे महाराज जी स्वयं जाके उस माता जी को पूछे, हाउ इज योर फादर. तो ही सेड, हाउ डू यू नो, माय फादर इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. तो पुणे यात्रा चल रही थी, तब सब लोग पुणे में थे, अब बॉम्बे में पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए. तो सहज जाकर गुरु जी ने उनसे पूछा, हाउ इज योर फादर. तो बोले कि अभी भी एडमिट हो गए. तो शी सेड, हाउ डू यू नो महाराज. तो महाराज सेड, व्हेन देयर इज लव यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो ब्यूटिफुल इट इज. प्रेम ऐसी शक्ति है जो दो आत्माओं को जोड़ देती है, तो शरीर को नहीं जोड़ती, आत्माओं को जोड़ देती है, और आत्मा का टेलीपति चलते रहते हैं बराबर से. जैसे समझो आज मैं सुबह बैठकर किसी के लिए बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, वृंदावन में सब जमुना किनारे बैठा हूँ और किसी के लिए आई एम प्रेइंग, तो वो व्यक्ति आपको फ़ोन करके बोलेगा, प्रभु जी आपकी सुबह सुबह याद आई मुझे. तो मैंने कहा यस आई वॉज प्रेइंग फॉर यू. आपको समझ में आया, दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक थियरी, दिस इज डे टू डे एक्सपीरियंस. लेकिन हृदय से प्रेम होना चाहिए बस, दैट्स ओनली अंडरलाइंग कंडीशन. तो उस तरह से ब्रजवासी लोगों को राधा रानी पर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, सदा उनका हित का सोचते हैं, सदा सोचते हैं कि इनका विवाह कृष्ण से हो और इनका जोड़ी जुगल जोड़ी बनी रहे, यही चल रहा है उनका विचार. जैसे सुबह आते हैं ना कुंड पर तो पानी को पीला देखते हैं, वही से उनका जो प्रेममय चिंतन शुरू होता है. अरे रोज राधा रानी नंदगांव जाती है, वापस आती है, जाती है आती है, यशोदा देवी रोज उसको देखती है, उसको इतना प्रेम है उसके ऊपर. एक दिन प्रेम से गले लगाया होगा और गले लगाकर हाथ में हल्दी लगा दी होगी, फिर राधा रानी को बड़ी खुशी हो गई होगी, फिर राधा रानी वापस आई होगी, यहाँ पर पहुँचते ही होश में आई होगी और संकोच हो गया होगा और यहाँ पर आके हाथ धो दिए होंगे. जो उनकी कल्पना है वही सत्य है, और अपनी कल्पना को सत्य मानकर वो सब लोग उधर क्या कहते हैं ना, डेटेक क्या कहते हैं उसको, डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ऐसे ही हो गया है, जो हो गया होगा वो हो गया, ऐसे ही बना देते हैं इसको. रेजोल्यूशन दे ऑल टेक रेजोल्यूशन कि ऐसा ही हो गया है, चलो राधा रानी की सगाई हो गई, चलो चलते हैं भानु महल में, वृष भानु महाराज और कीर्ति मैया को हम लोग बधाई देते हैं कि आज हमारे दिल की तमन्ना पूरी कर दी आप लोगों ने. तो सब लोग पहुँचते हैं, तब तक सब शांति है, किसी को पता नहीं कुछ, राधा रानी भी शांति में बैठी, सब लोग आते हैं बधाई हो बधाई हो बधाई हो, सब लोग पुष्पानु महाराज कहते क्या हो गया, क्या बधाई हो, आप कह रहे हो क्या हो गया, अरे राधा रानी की सगाई हो गया, आपने हमको बताया नहीं, हम जानते हैं सब कुछ. तो पुष्पानु महाराज और कीर्ति मैया मतलब पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों मिलकर राधा रानी को देखते हैं, और राधा रानी क्या करते हैं, नीचे देखते हैं. देखो बॉडी लैंग्वेज कितना सारा मैसेज कन्वे करती है, कोई डायलॉग नहीं हो रहा है उधर, ये उनको देखते हैं, उनको देखते हैं, दोनों मिलकर उनको देखते हैं, वो नीचे देखती है। तो फिर पूछते हैं व्हाट इज द रीजन, क्या है ये बात, आप ही बताओ, बिकॉज ओनली यू कैन टेल। तो वो फिर शर्मा के बता देती है, डर डर के बता देती है, ऐसे ऐसे हुआ, मैं ऐसे रसोई बनाकर निकल रही थी तो निकलते निकलते यशोदा माई ने मुझे इतना प्रेम से गले लगाया, अब मुझे कुछ समझ में आने के पहले ही हाथी हाथ में हल्दी लगा दिया, तो मुझे आके बड़ा संकोच हो गया, इसलिए मैंने हाथ धो लिया नीचे। तो डांट पड़ने के बजाय कीर्ति माता जी ऋषभानु महाराज को बड़ी खुशी हो जाती, क्यों खुशी होती है, उनके मन में भी यही चल रहा है कितना दिन चलेगा जाना आना और कैसे बात करें, हाउ डू यू टॉक, बिकॉज ही इज हिज फ्रेंड शी इज माई फ्रेंड, है ना, दोनों फ्रेंड फ्रेंड्स है, वो भी उनको भी संकोच है इनको भी संकोच है, शुरुआत कौन करे। तो उनको कुछ अच्छा क्यों लगता है कि अच्छा हुआ शुरुआत उनकी तरफ से हुई, लड़के वालों की तरफ से शुरुआत हो गई, हमारा काम आसान हो गया, हमको खाली हाँ